कराई, उसको जानते हैं आप? इनका नाम है हेजल बैन। पूरे यज्ञ में ऐसा नाम केवल इनका ही है, हेजल। हेजल का अर्थ हेजल नट, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो आज का लास्ट डे भट्टी का, जब भी हम अपने आप को कोई चैलेंज देते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क के कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। इसीलिए ब्रेन को चैलेंज देते रहना है। तो आज लास्ट डे, कुछ चैलेंजेस हम लेंगे। 3 नंबर की पॉइंट क्या थी? दुआएं दो, दुआएं लो। तो हाथ ऐसा करेंगे और ये जो ये है, इससे 1 2 3 4, ये 4 बार हो गया, फिर उल्टा 1 2 3 4, दोनों एक साथ, प्रेम जिम। यहां आ गए, यहां से फिर इधर, ठीक है? अभी उसके साथ शब्द जोड़ेंगे, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो। अब फास्ट, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो। तो ये क्या कर रहा है? हमारा राइट का ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट का राइट को कंट्रोल करता है। हम दोनों को ऑर्डर दे रहे हैं एक साथ। तो ब्रेन के लिए ये चैलेंज है, और जैसे उसे कोई चैलेंज मिलता है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है, फिर न्यूरॉन्स जो है वो सक्रिय हो जाते हैं हमारे, और हमारी लर्निंग की जो शार्पनेस है वो एकदम से बढ़ जाती है। और इससे भी आगे अगर और कुछ करना है तो दोनों रिवर्स, फिर 1 2 3 4, यहां से ये, यहां से चालू करेंगे और ये वाला उल्टा चालू करेंगे, ये यहां से चालू करेंगे, एक उल्टा एक सीधा करो। दोनों दोनों तरफ से उल्टा। और वो बोलना भूलना मत, दुआ दो दुआ लो, दुआ दो दुआ लो, सुख दो सुख लो। तो ये है 3rd नंबर की पॉइंट। उसके बाद में 2nd नंबर की पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। तो आज सारे दिन भर जो मधुबन में रहते हैं, मधुबन की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जहां पर भी जो जो स्लोगन लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है। और पढ़ना ही नहीं है, केवल याद करना है, और याद ही नहीं करना है, केवल कौन सा कहाँ लिखा है वो भी याद रखना, जहां पर भी हाँ एकदम ज्यादा बोझ नहीं देना है मन, धीरे धीरे। पहले तो एक राउंड में देख लो कि कौन कौन से कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे ओम शांति भवन में इधर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? पवित्रता के बारे में लिखा है ना, शिव भगवान उवाच। बाहर बाहर नहीं, वो अंदर। वो है अभी भी। वो जिसने लिखा है वो व्यक्ति किस भाषा का होगा, लिखने वाला? उसमें ल जो है ना, ये वाला ल लिखा है। हम जो ल लिखते हैं हिंदी का, ये है ल। उसमें जो ल लिखा है वो ये है, मराठी का ल। तो लिखने वाला मराठी हो सकता है, दूसरा श, उसमें जो लिखा है वो कौन सा श लिखा है, वो जो वहां पे है, ये है हिंदी का श, उसमें जो श लिखा है वो है ये वाला श, ये मराठी का श है, ये हिंदी का श है। तो आज के ऑब्जर्व करना है कहां कहां क्या क्या लिखा है, सेंटर पे क्या क्या लिखा है जो बाहर रहते हैं, गीता पाठशाला पे क्या क्या लिखा है, या आपका जो घर है उसमें जो अलग अलग जगह जो जो लिखा है, स्लोगन्स लगा के रखे हैं वो, तो ये भी क्या है, एक श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। वो जो भंडारा है वहां क्या लिखा है नीचे, ये ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दुआ भी है दवा भी है, एक एक कण मुहर के समान है। मुरली की डेट क्या लिखी हुई है, मुरली की डेट क्या लिखी है, सिक्सटीन टू 88। तो कहां क्या लिखा है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व देख लेना है, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, और फिर कई बार बीच में अचानक आंखें बंद करके उसे याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये है आज का दूसरा कार्य। आज का तीसरा कार्य है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, रहम दिल कल्याणकारी और मास्टर दाता। ये कितने शब्द हैं, 3। इन 3 शब्दों को एक एक जो शब्द है, र एक कलर से लिखेंगे, ह एक कलर से लिखेंगे, म दूसरे कलर से लिखेंगे, द दिल दूसरे कलर से लिखेंगे, एक 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 कलर से ये 4 शब्द लिखेंगे। ठीक है, मास्टर म दाता, हाँ मास्टर दाता, वो जो भी है एक 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 उसका जो अल्फाबेट है वो एक एक कलर से, ये तीसरा। और पहला जो है वो है रिवर्स वर्ड, बेफिक्र बादशाह, उसको उल्टा लिखो, हशा दबा, हशा दबा। एक है लिखना और एक है मन में पढ़ना, मन में सोचना उल्टा। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे सुशील, इसको उल्टा सोचो क्या है हर एक को अपना सोचना है, लिखना नहीं, वो एक और स्किल है। दीज आर ऑल प्रैक्टिसेस, ब्रेन प्रैक्टिसेस, जिससे ब्रेन क्या होता है, शार्प। तो हशा दबा, क्र फी बे, बेफिक्र बादशाह। तो ये एक इसका लिखना है। और लास्ट जो है वो है मुक्तिधाम का दरवाजा खुलने का मार्ग क्या है, बेहद का वैराग्य। तो मुक्तिधाम का दरवाजा खुल रहा है, इसको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन जो भी होता है वो कैसे होता है, बहुत क्लियर विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करते समय कलर क्या है, साइज क्या है उसकी, कितना बड़ा है, कहाँ खड़ा है, रंग कौन सा है, और कैसे खुल रहा है धीरे धीरे। और विजुअलाइजेशन में क्या, साउंड इफेक्ट ऐड करो, मौसम कैसा है साउंड इफेक्ट ऐड करो, कलर ऐड करो, जितना विजुअलाइजेशन विविड होगा, अत्यंत स्पष्ट होगा, उतनी अनुभूति होगी। अंग्रेजी में एक बुक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, शक्ति गवान की, द बेस्ट बुक ऑन विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को कैसे डेवलप करे, छोटी सी किताब है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कि हमारा विजुअलाइजेशन में हम क्या क्या करें कि जिससे विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर हो, क्योंकि जो हम विजुअलाइज करते हो धीरे धीरे बनने लगता है, वो होने लगता है अपने आप। तो ये हो गया, ये आज के होमवर्क और आज का भट्टी का अंतिम दिन। कल से नई भट्टी शुरू करेंगे। इस भट्टी का एक अनुभव हम अपना बता रहे हैं, ये एक नया अनुभव रहा इस भट्टी का। कैसे क्योंकि ये जो वक्ता, जो भी 31 वक्ता, वो जैसे ही क्लास करा रहे थे तो हम तो वहां बैठे हैं, तो 5 पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट्स क्या है वो तो पता नहीं रहते पहले, यहां बैठ के ही पता चलते ये है। फिर वो 5 पॉइंट्स लिखना, क्लास सुनना, लिखते लिखते ही उसका क्या होमवर्क है वो वहीं बैठे बैठे क्रिएट करना कि इस पॉइंट पर ये होमवर्क, उस पॉइंट पर ये होमवर्क, उस पॉइंट पर वो होमवर्क, फिर यहाँ से तुरंत रूम पर जाने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट करना, क्योंकि बहुत सारी आइडियाज तो यहीं बैठे बैठे आती है कि ये करना है वो करना है वो, और ये 31 दिनों के 31 होमवर्क सब अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से, हर दिन के 5, तो वो एक नया अनुभव रहा। और फिर उसको हिंदी एंड देन इंग्लिश एंड विथ रेलेवेंट पिक्चर्स उसको ग्रुप में पोस्ट करना, तो वो सारी चीज़ें, तो वो एक नया अनुभव था। तो कल से जो भट्टी चालू हो रही है, अभी हम कहाँ, हमारा 2004 पूरा हो गया, 2004 तक की, 1970 से ये यात्रा हमने चालू की, 2004 तक की सारी मुरलियाँ पूरी होगी, कितनी हुई होगी सुखदेव भाई, टोटल कितनी मुरलियाँ है, और उसमें कुछ कुछ मुरलियाँ रिपीट हुई है, क्यों, क्योंकि हमने धवल क्रांति एक प्यूरिटी का पूरा सीरीज बीच में लिया, उसमें जितनी मुरलियाँ आई वो वापस हमने रिपीट ली फिर इसकी वजह से। तो 2005 और 2006, 2005 में 11 मुरलियां है, 2006 में 10 मुरलियां है, तो टोटल 21 दिन। तो कल से एक नई भट्टी चालू होगी जिसका शीर्षक है मना है, मना है, बस इतना ही है, मना है। तो 21 दिनों की भट्टी है, हर दिन एक मुरली ली जाएगी, और मुरली टाइमिंग है 5:30 चालू होगा, और एग्जैक्ट 6:00 से पहले ही अगर एंड कर दे तो बहुत अच्छा, घंटी बजाने का काम नहीं, और कोई रिवीजन दूसरा वक्ता आके रिवीजन नहीं कराएगा। परंतु जैसे आज जिस वक्ता ने मुरली रिवाइज की, मुरली को रिवाइज किया, कल का जो वक्ता है इसने जो जो पॉइंट बताए वो अपने स्पीच में उसको इंक्लूड करनी है, मैक्सिमम मुख्य मुख्य पॉइंट। और मुख्य रूप से मुरली का टाइटल है मना है, अर्थात हर मुरली से 3 निषेध बिंदु निकालने हैं जो मुझे नहीं करना है। जैसे सबसे पहली अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2005 की, उसमें जैसे देह भान में नहीं आना है, लापरवाही नहीं करनी है, दुनिया की आत्माओं के प्रति इनडिफरेंट नहीं होना है, उनकी आवाज़ सुननी, मतलब क्या नहीं करना है वो पॉइंट निकालने हैं, टोटल पॉइंट 3 निषेध बिंदु जिसको कहेंगे, मना है, कौन सी बातें मना की है कि ये नहीं करना है। ये भी एक ब्रेन के लिए फोकस है, जो करना है उसके ऊपर फोकस रहता ही है, पर जो नहीं करना है अगर कहो तो ये थोड़ा सा काम करने लगता है तेजी से, कि मुरली में तो ये करो वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसा, पर इसमें से अब ढूंढना ये है क्या नहीं करना है, तो ये एक्स्ट्रा काम है थोड़ा तो माइंड जो है ना सक्रिय हो जाता है। तो हर मुरली से क्या निकालना है, क्या क्या नहीं करना है, ऐसे 3 निषेध बिंदु, डू नॉट डू थिंग्स, 3 पॉइंट्स पर मुरली। तो कल से 5:30 to 5:30 इंग्लिश सेशन होगा जो हम लेंगे, शिव मना भव, उसमें योगा, योग की अलग अलग विधियाँ जिससे मन मन मना भव हो जाए, योगा हैक्स जिसको कहते हैं, हैक्स मतलब ट्रिक्स, हैक्स मतलब शॉर्टकट्स, कि कैसे मन को उस परमात्मा में लगाएं, तो वो हाफ आवर का क्लास हम लेंगे, और फिर 5:30 to 6:00 हर मुरली का, एक मुरली का एक वक्ता रिवाइज करेगा। टोटल 21 मुरली है, 21 डेज की ये भट्टी रहेगी, और अभी जो भट्टी पूरी हुई, इस भट्टी में जिन्होंने भी पूरा होमवर्क किया उनके लिए मेडल होगा, ट्रॉफी नहीं होगी, मेडल। अभी ये जो भट्टी आज जो पूरी हो रही है, इसके लिए 2 तारीख तक जिनके भी होमवर्क पेंडिंग है वो सारे 2 तारीख तक सारे होमवर्क शाम तक पोस्ट कर दो, उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो लास्ट भट्टी चली थी फरवरी में, याद में लीन, तो उसमें मधुबन से 3 लोग हैं जिनको ट्रॉफी मिली है, याद में लीन की ट्रॉफी, जैसे अलेक्जेंडर दुमास का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है 3 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स मतलब वो तीन दोस्त थे, 3 सिपाही थे, वो जी जान लगा देते थे पर राजा और रानी पर कोई आँच नहीं आने देते थे। उसमें पूरा अलग अलग दुश्मन, कौन कौन दुश्मन आए और कैसे उन दुश्मनों से इन 3 दोस्तों ने मदद की, रक्षा की, अपने राजा की और अपने रानी की, उनको कहा जाता है थ्री मस्केटियर्स। ये बहुत बहुत फेमस नॉवेल, नॉवेल कहो बुक जो भी है इंग्लिश लिटरेचर का, तो ये भी हमारे तीन मस्केटियर्स है। तो पहले सुशील भाई, पुरुषोत्तम भाई और अरविंद भाई तो दो मिनट के लिए आ जाएंगे। और ये तीन उनकी ट्रॉफियां है यादमेलिन की। यादमेलिन भट्टी जो थी वो उसमें क्या होमवर्क था, क्या होमवर्क क्या था? तो ये अरविंद भाई की बैठ जाइए, बैठ जाइए, पुरुषोत्तम भाई भी आ ही जाएंगे। इसको हटा देते हैं। और वो जो तीन मस्केटियर्स थे ना, तो उसकी शुरुआत में एक युवक होता है वो जाता है वहां पर उनको ढूंढता है, तो वो चार लोग हो जाते हैं वैसे। वो तीन लोग उसको बहुत प्रेरणा देते हैं, वो तीन लोगों से ही वो चौथा जो होता है ना युवक वो सीखता है। तो ये चार लोग मिलके काम करते हैं, बाकी नाम तीनों का, मतलब मेन काम तीनों का होता है। तो ये सुशील भाई जी की है और ये पुरुषोत्तम भाई जी। तो ये याद में लीन की तीन ट्रॉफियां है। तो दो दो शब्द कुछ कहेंगे।
ओ
पहले
ओम शांति। ट्रॉफी लेना ये भी एक बड़ी बात है, वैसे विशेषता है, लेकिन साथ साथ में जो हमारा पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन तीव्र होना चाहिए उसके ऊपर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि बठियां ट्रॉफी तो भी जाकर अलमारी में रख दी जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से जो भी हम यहाँ बाबा के महावाक्यों का अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, उसको जीवन बिलाने का प्रयास करते हैं, वही हमारे काम में आता है। बाकी नंबर आना, फेल होना, पास होना, ये भी एक वैसे पुरुषार्थ है। पास होने के लिए हम अपना टाइम सफल करते हैं, उसमें एक एनर्जी मिलती है, जो हमारी ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है, अंदर में एक अलग से पुरुषार्थ की चिंगारी लगती है, उसमें अंदर में एक जो अंधेरा वो प्रकाश में तब्दील होता है। तो सबके प्रयास से ही हमारे जीवन की प्रगति के रास्ते खुलते हैं। जैसे बताया तीन लोगों से चौथे ने सीखा है, जो महीनावर सीखते रहे इधर बताया उन्होंने,
एक से तीन ने सीखा
और तीन ने एक से सीखा, तीनों से एक ने सीखा। तो सर्व के सहयोग से सुख में संसार की स्थापना है। तो मतलब पुरुषार्थ में हमको निरंतरता बनाए रखना सबसे बड़ी बात ये है। भले कई बार आपका मूड ऑफ है, नहीं जाने को मन कर, लेकिन आकर हमने देखा यहाँ बैठते हैं, अगर अमृत वेला अगर थोड़ा भी ढीला होता है तो यहाँ बैठने से कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो सारे दिन में काम करती रहती है। कुछ ना कुछ एक नई नई चीज़ हमारे हाथ में लगती है, कुछ ना कुछ नया चिंतन करने की एक दिशा मिलती है, और उससे हमारे जीवन में एक नवीनता आती है। दूसरों के जो गुण विशेषताएँ देखने की हमारी दृष्टि है जो डिवेलप होती है। तो पुरुषार्थ के छोटे छोटे रास्ते हैं, जिस रास्तों पर चलने से हम अपने आप को भी एक अच्छी फीलिंग में महसूस करते हैं और दूसरों के लिए भी निरंतर प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। तो पुरुषार्थ में निरंतरता चाहिए, ऐसा नहीं है दो दिन आए चौथे दिन गायब हो गए तीसरे दिन गायब हो गए। अगर जैसे यहाँ रहते हैं, यहाँ वालों के हम अग्रह हैं तो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ आना, अगर हमारे पास कोई दूसरी सेवा नहीं तो आना बड़ा जरूरी है, जरूरी अपने लिए है। हम बाबा के लिए भी नहीं वैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कर किसके लिए करें, अपने आप के लिए करें, स्वयं की डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो अपने आप से हम थोड़ा क्लियर रहें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप से कितना स्पष्ट रहते हैं, अपने आप से कितना सच्चाई इस से चलते हैं, वो सारा हमको यहाँ आकर सीखने को मिलता है। तो ये ट्रॉफियाँ तो चलती रहेंगी, आगे भी जीतते रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ये ब्राह्मण जीवन, स्टूडेंट लाइफ पुरुषार्थी जीवन है, और पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत सारी बातें होती हैं, और उन बातों को फेस करने के लिए उमंग उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं, कायम रखते हैं, उतना हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो ट्रॉफी का एक सिस्टम है ये भी एक ब्राह्मण जीवन में या पुरुषार्थियों का उमंग उत्साह बढ़ाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसके माध्यम से एक लगन रहती है कि हमको ट्रॉफी जीतनी है। जब ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य रखते हैं तो कई प्रकार की जो बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको हम बखूबी दृढ़ता से फेस करते हैं, और फेस करके जब पास होते हैं तो अपने आप में एक विशेष नशा, उमंग उत्साह, फेथ बढ़ता है। तो जैसे स्वयं को यह सारा अनुभव होता है, तो वैसे ही जो और बाकी जो लोग होते हैं, जो देखने वाले, सुनने वाले, जिनका उमंग उत्साह थोड़ा कम होता है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे इन्होंने प्राप्त की है ट्रॉफी, वैसे हम भी ले सकते हैं। तो ये उमंग उत्साह बढ़ाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है जो ब्राह्मण जीवन में हर एक पुरुषार्थी के लिए आवश्यक है। ओम शांति।
ओम शांति। हमने ऐसा सोचा था कि ट्रॉफी वगैरह का ध्यान नहीं दिया शुरू से ही, क्योंकि सोचा कि अगर ट्रॉफी लेते हैं तो फिर थोड़ा ईगो ना आ जाए। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा जब सामने आते हैं, लोग तारीफ करते हैं, तो देखा हमने सूक्ष्म में ईगो आना शुरू होता है। तो कोशिश किया कि थोड़ा इसे ना ले, लेकिन अब हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, तो ऐसा लास्ट में आया कि क्या पता क्या हो जाए, कब क्या हो सकता है। तो एक ट्रॉफी लेना जरूरी है कम से कम, और आगे भी देखें, क्योंकि जब इसके लिए मेहनत किया तो बहुत सारे व्यर्थ से हम मुक्त हो गए। अभी जब से इस ग्रुप से जुड़े, बाबा ने भाग्य दिया हम सभी का कि ऐसे ग्रुप से बाबा जोड़ देता है। नीचे भी थे तो बाबा ने अच्छे ग्रुप से पुरुषार्थ करने वालों से जोड़ दिया, यहाँ भी जो पुरुषार्थ करने वाले भाई बहन है उसके साथ बाबा ने आते ही जोड़ दिया। इसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता है, क्योंकि नहीं तो हम फिर व्यर्थ में जाते हैं। अगर ऐसे ग्रुप क्या है, संगठन हमें बचा के रखता है हमेशा। और इतने सुंदर अव्यक्त वाणी, अब हम लास्ट में पहुंच गए, पता ही नहीं चला दो ढाई साल कैसे चल, दो साल मुझे लग रहा है हो गया। और इतना सुंदर अव्यक्त वाणी, और एक नए तरीके से उमंग उत्साह से, अलग अलग विधि से भाई जी क्रिएटिव करके, मतलब अव्यक्त वाणी तो पढ़ते थे लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कभी सोचा ही नहीं था, कि नए नए तरीके से थोड़ा ब्रेन बुद्धि को चला करके बहुत मजा आ रहा है। मतलब अभी ऐसा लगता ही नहीं कि अव्यक्त वाणी पढ़ रहे, ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ में मजा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं हम सभी। और बाबा का थैंक्स, भाई जी का थैंक्स, ग्रुप का थैंक्स, सभी खास करके हमारे सुशील भाई जी का भी थैंक्स, अरविंद भाई का थैंक्स, यहाँ जो भी भाई बहने बैठे हैं, दिल से शुक्रिया है सभी का, क्योंकि सभी प्रेरणा देते एक दूसरे को हमने देखा। ओम शांति।
विशेष रूप से हमारे बाबा राम भाई जी का भी थैंक्स, जिन्होंने यहाँ पनाह हमको दी यहाँ हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ तो ओम शांति भवन निर्माण का कर्तव्य चल रहा था, तो कई बार हमारे ठिकाने बदलते रहे, रिसेप्शन से ओम शांति भवन पहुँचे, कभी बरामदे में, कभी बाहर, कभी इधर उधर, कभी। तो अभी हमको बाबा राम भाई जी ने बड़े प्यार से, बड़े दिल से, शिद्दत से हमको यहाँ जगह दी, तो इसके लिए बाबा राम भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा पन्ना लाल भाई जी भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी है। दूसरा टोली अभी वो संभाल कर रखते हैं, क्या है कैसे सबको टोली दी जाए, पन्ना लाल जी। और तीसरा हमारे जो ये साउंड डिपार्टमेंट, सुखदेव भाई जी, और क्योंकि सवेरे सवेरे जो इतनी व्यवस्था करनी, सारी कुर्सियाँ लगानी, हम तो केवल आकर सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, लेकिन इतनी कुर्सियाँ लगानी, व्यवस्थित तरीके से रखना, उनको संभालना, सार करना, ये कुशल भाई जी, मणि भाई जी, हमारे ये अखिल भाई जी, डॉक्टर रम्या, दीपाली बहन, कभी नाम लिया जा सकता है, फिर क्या नाम, दीपा बहन, तो सारी बहनें, सारे बहन भाई, सबके सहयोग से काम होता है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। बोर्ड लिखना तरीके से अपना, ये निखिलेश भाई जी, छोटे लाल भाई जी, सब उसमें मतलब सबकी उपस्थिति से भी एक एनर्जी यहाँ क्रिएट होती है, जिस एनर्जी से दूसरे सबको उमंग उत्साह मिलता है। तो सबके सहयोग से कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, कारवा बढ़ता रहेगा, ऐसी शुभ भावना कामना रखते हैं। बाकी मेन रूप से सचिन भाई का भी कम सहयोग नहीं है, सारा तो उन्हीं का ही है भाई जी। लेकिन मुझे पता है स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ जी,
हाँ चार लोग
सोफे बोल रहे, सोफे का धन्यवाद। और जहाँ हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ एक आम का पेड़ हुआ करता था, तो वहाँ ये बहुत अच्छा थल्ला बना दिया, चौपाल जो लगी हुई है, चौपाल का हम पूरा स्टेज का भी फायदा ले रहे हैं। बाकी सब यज्ञ की दादियाँ सूक्ष्म रूप से हमको मंगलसाद से उड़ा रहे हैं, बाप दादा की छत्रछाया हम सब के ऊपर है, पूर्वज हैं जो बता रहे हैं कि जो चार बेट कर रहे हैं, तो हम सब उनकी छत्रछाया में आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ओम शांति,
ओम शांति। एक माता एक बार आए थे, जब पहले पहले ये ट्रॉफी का हमने चालू किया था, तो वो कह रही थी कि बचपन से मुझे हमेशा कम मार्क्स मिले, बचपन से हमेशा फेल होती रही, बचपन से मैंने ताने सुने, मुझे कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली, कभी कोई मेडल नहीं मिला, कभी मैं फर्स्ट नहीं आई, हमेशा फेल ही होती रही, ताने ही सुनती रही। इतना मन में एक दुख था गहरा, एक ये कि भाई सब मेरे से बहुत होशियार है, मैं कम होशियार हूँ। तो उसने जब ये पहली बार ये सब चालू किया, मुरलियाँ पढ़ना चालू किया, होमवर्क किया और उसको ट्रॉफी, तो उसने कहा कि ये मेरे जीवन की पहली ट्रॉफी है। और ये केवल ट्रॉफी नहीं है, एक बहुत बड़ा मतलब जो एक दुख था भीतर, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, गीत में तो वो वैसे कि सब जीतते रहे मैं हार दी गई, तो ये जैसे एक बाबा की तरफ से है मेरे लिए। तो फिर से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और कल हम फिर मिलेंगे अभी नई भट्टी के साथ। कल किसको देना है?
मना है,
मना है, पर क्लास में तो आना है। तो बहनों से चालू कर देंगे, एक बहन एक भाई, एक बहन एक भाई, दीपाली बहन लिखते जाओ फटाफट,
थोड़ा गर्दन सीधी रखो आगे।
तो यहाँ पहले जो मधुबन में नहीं है और जो रुकने वाले है वो कौन है, ऐसे कोई है जो मधुबन में है और रुकने वाले है? हेजल पेन है क्या? मॉर्निंग में होंगे। तो दीपाली बहन, पुरुषोत्तम भाई, हेजल बहन कल परसों है,
कल जाएंगे।
चलो ठीक है, हम लिस्ट बना देंगे एक, फिर देंगे सबको, ठीक है, पोस्ट करेंगे बताएंगे। तो